पकड़ करके उनको पकड़ लिया और पकड़ करके जोर जबरदस्ती उनको उसी आसन पर बैठा दिया। अब आसन पर बैठते ही चारों तरफ में परस्पर खाना खुशी और हो हल्ला मचने लग गया। ये देखो तो आज भ्रष्ट कर दिया हमको, यहाँ पर समाज में ला करके सबसे ऊंचा सम्मान एक मुसलमान को दे दिया जो कि गाय भैंस खाते हैं। आप तो खूब कोलाहल होने लगा। उन्होंने कहा जैसे देखिए आप दैताचार्य जी, आपके घर में हम लोग आए हैं, आप हमारा अपमान कर रहे हैं। एक मुसलमान को बैठा करके और हमारे सामने पहला उसको पूज्य वाला आसन आप दे रहे हैं और भोग दे रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर नहीं भोजन करें। वो देखने लगे कुछ चुपचाप रहे, उन पर कुछ असर नहीं हुआ। उन्होंने वो भोग की थाला उन्हीं के सामने में समर्पित किया। अब ये तो है करने लगे हरिदास ठाकुर जी, किंतु ये मान नहीं रहे। और उधर में ब्राह्मणों का समाज बोला कि हम लोग तब अब नहीं खाएंगे, हम लोग अब उठ रहे हैं। मुझे कोई बात नहीं, आप लोग आराम से खुशी के साथ में आप लोग पधार सकते हैं, आप लोग जाएंगे। आप लोगों की हमको जरूरत नहीं है, ऐसे समाज की जरूरत नहीं है जो भगवंत भजन नहीं करता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, यदि शूद्र कुल में भी जन्मा कोई व्यक्ति हो, चंडाल कुल में भी, और वो भजन करता है तो तस्मै देयम् ततो ग्राह्यम् शौचो पूज्यो यथा। हमारे समान भगवान कहते हैं, हमारे समान पूजा है, पूज्य है, उसी को दो और उसी का ग्रहण करो, उसको साधारण मुसलमान या शूद्र कुल का मत समझो। इसलिए मैंने जो किया है वो ठीक किया है, शास्त्र सम्मत किया है। आप लोग वेद शास्त्र उपनिषद सब नहीं जानते हैं, इसलिए आप लोग जा सकते हैं। सब लोग चले गए उस समय। तो थोड़ी देर के बाद में उन्होंने बाहर में जाकर के विचार किया, ये बड़े वैदिक ब्राह्मण हैं, जो कुछ करते हैं शास्त्र सम्मत करते हैं, हम लोग इनकी बात का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ऐसा समझ करके फिर सब लोग एकत्रित होकर के आकर के इनके चरणों में क्षमा मांग करके फिर वही प्रसाद हो। ये कहते हैं न धर्म, हमें उस धर्म से कोई प्रयोजन नहीं जिसमें भगवान की भक्ति का कोई भी चीज नहीं हो, उस समाज से हमको लेकर के कुछ नहीं करना है। एक समय की बात है, हमारे प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर हमारे परम गुरुदेव, जब वो प्रचार कर रहे थे तो बड़े बड़े लोग आकर्षित होकर के, छोटे कुल के बड़े कुल के सभी लोग आकर्षित होकर के आए। हमारे यहाँ पर एक मुनि महाराज जी थे, हमारे गुरु जी ने उनको संन्यास दिया, स्वामी महाराज जी के साथ एक दिन में संन्यास। तो ये पहले गृहस्थ थे किंतु प्रभुपाद के प्रति समर्पित थे, वैष्णव थे, पढ़े लिखे तो खूब नहीं थे किंतु इनका व्यक्तित्व बड़ा गंभीर था और जो कुछ कहते थे उसको पालन करते थे। तो उनकी एक लड़की थी, उन्होंने लड़की की शादी तय की थी और कल ही बारात आने वाली थी, अब कल आएगी, लोगों ने उस विवाह को काट दिया। काट दिया ये, अरे ये अब तंबाकू नहीं खाता पीता है, हुक्का नहीं, समाज का हुक्का नहीं पीता और बीड़ी नहीं पीता है और एकादशी व्रत करता है, ये हमारे समाज की चाल चलन आचार विचार इसने छोड़ दिया और किसी को बुलाता नहीं है अपने घर में, खिलाता नहीं है और प्याज लहसुन ये सब परोसता नहीं है, तो ये हम लोगों का ये अपमान है। ले जाकर के उसे कहा, देखो उस घर में अपनी लड़की की शादी मत करना, हम गांव वालों ने मिल करके उसको छंटाई कर दिया है, बाइकआउट कर दिया है, इसलिए उसके घर में हमारा ब्राह्मण धार्मिक कार्य करने के लिए नहीं जाएगा, हमारा नाई उसके घर में काम करने नहीं जाएगा, हमारा ये पानी भरने वाले वहाँ पर नहीं जाएंगे और हम लोग कोई भी उसके घर में खाने या पैर धोने के लिए, पैर की धूली देने के लिए नहीं जाएंगे। अरे भाई ये समाज ही समस्त उसका विरोधी हो गया और ऊपर से उसने क्या किया है, यज्ञ पवित्र उसको नहीं लेना चाहिए, यज्ञ पवित्र उसने धारण कर लिया, ये ब्राह्मणों का ब्राह्मण बनता है। अच्छा ठीक है, बाइकआउट कर दिया। इन्होंने कहा जैसे अच्छा ठीक है, बड़े आज ही का शायद कुछ दिन का पहले का समय, जबकि आम पके हुए होते थे, ये बड़ा सुंदर सुंदर आम पका हुआ था, कटहल पके हुए थे, और अच्छे ठीक कलकत्ते से उन्होंने रसगुल्ला चमचम ये सब चीजें लाई, अच्छी अच्छी दही मीठी दही, यहाँ पर खट्टी दही होती है, लाल लाल बंगाल की दही मुख से लाख टपकने जाए और छेने की तरकारी सब्जी की सब व्यवस्था की, सब्जी इत्यादि सब लाया, घी तैयार सब तैयार था, अब पूरी बनने की तैयारी थी जब वो लोग आएंगे। दूसरे दिन विवाह था, सवेरे उन्होंने खबर दिया वो विवाह करने के लिए आए नहीं, खबर कुछ भी नहीं दिया, विवाह करने के लिए आए नहीं, और सारा गांव बाइकआउट कर दिया, उन्होंने भी बाइकआउट कर दिया। तो ये बोले जैसे अच्छी बात, आज मेरा परम सौभाग्य है, आज लड़की की शादी में इतने रुपए खर्च होते, ये सब चीजें जाती, आज वैष्णव लोग बड़े आनंद के साथ में इसको पाएंगे, बस सबको गाड़ी में भर करके और कलकत्ते में ले गए जहाँ पर प्रभुपाद जी थे, किसी को बतलाया नहीं, उनको देख करके जितने ब्रह्मचारी थे सब नाचने लग गए। आज हमारे सनातन प्रभु जी आए हैं, जरूर कुछ ले आए होंगे हम लोगों के खाने के लिए। जब भी वो मठ में जाते थे ब्रह्मचारी कहते थे प्रभु हमारा गमछा नहीं है, हमारा कपड़ा, एक छतरी चाहिए मुझे, एक कुछ चाहिए, उनसे ऐसा जैसे पिता से करते हैं ऐसे उनसे मांगते थे। आज गाड़ी में देखा जब भरा हुआ आम और ये सब चीज़ें आई हैं बड़े, आए तो प्रभु जी बहुत रुपए खर्च करके ये सब चीज़ें लाए हैं, और उन्होंने आदेश दिया ये सब ब्रह्मचारियों को ठाकुर जी का भोग लगाया जाए और लगा करके सबको बांट दिया जाए। उधर में तो बांटने लगे सब लोग, और उनके जो परम प्रिय उनके जो शिक्षा गुरु थे कौन महाराज, नेमी महाराज, बड़े विद्वान आदमी थे, संस्कृत के और सब बड़े प्रतिष्ठित, वो जाकर के प्रभुपाद से बोलिए प्रभुपाद आज सनातन प्रभु बड़े दुख से यहाँ आया है, क्यों आए तो देखा जो ब्रह्मचारी लोग बड़े आराम के साथ में ये सब खा रहे हैं, तो प्रभु उसकी लड़की की शादी थी और लड़के वाले ने इनकार कर दिया तो वो सब कुछ लेकर के ठाकुर जी के भोग के लिए ले आए और सबको ठाकुर जी का भोग लगा करके सबको बांटा जा रहा है। वास्तव में आज उसकी लड़की की शादी नहीं होने से कितना दुखी हो सकता है आप बतलाइए, बड़े दुखी हो गए प्रभुपाद जी, आंखें लाल हो गई, ने कहा जी ऐसा समाज ध्वंस हो। और बोले जी मैं कल यदि इसकी शादी नहीं हुई लड़की की तो मैं मर करके कोई वर बन करके और आ करके कल ही इससे शादी करूंगा। बस दूसरे दिन अपने आप घर में वो चले गए और दूसरे दिन अपने आप एक बड़ा योग्य लड़का, शिक्षित ग्रेजुएट कोई लड़का और बड़े धनी परिवार का, पर जी प्रभु जी हमने सुना जी आपकी लड़की की शादी बंद हो गई है, आप अपने की लड़की की शादी हमसे करेंगे? तो बोले भाई तुमको इतने बड़े उच्च कुल का तो मैं तो ऐसी कल्पना नहीं कर सकता, तुम इतना योग्य है, पढ़ा लिखा है, सुंदर है, सुकांत है, काम करने वाला है, धन तुम्हारे पास में है, मैं तो ऐसी कल्पना नहीं कर सकता, किंतु तुम्हारे माता पिता यदि इसके लिए राजी हों तो मैं कर सकता हूँ। उन्हें कहीं माता पिता से हमको कुछ नहीं पूछना है, हम तो अभी आए हैं और आप लड़की को हमारे साथ बिना पैसे की बिना किसी चीज की ऐसे ही आप उसका कर ग्रहण हमारे हाथ में दे दीजिए, बस अब लड़की लेकर के चले जाए। बड़े प्रसन्न हुए और उसी समय में साथ ही साथ उसकी शादी, उसको विधिवत ऐसे कोई मंत्र संत कोई ब्राह्मण तो आए नहीं, अपने आप तुम हमारी पत्नी हो, मैं तुम्हारा तुम मेरे स्वामी हो, बस माला बदल करके और उनको शादी कर। एक दिन की देरी हुई और उसकी शादी हो गई। यहाँ पर देखो कैसी निष्ठा उनकी है, धर्म शर्म और ये समाज का हमको कुछ नहीं भी जानते हैं, भगवान तो है ना, आखिर भगवान है ही नहीं है, इसलिए दुखी होने की क्या जरूरत है। यदि शादी नहीं हुई तो बहुत अच्छा, भगवान की अद्भुत कृपा है, यदि शादी हो गई तो बहुत अच्छा, ठीक है, प्रभु की इच्छा है। किसी भी और स्थान में हमको भगवान का भजन करना है, और जिनको निरपेक्ष रूप में भजन करना है उनको तो धर्म और धर्म इत्यादि की कोई जरूरत नहीं है, भगवान का भजन करना ही धर्म है, भगवान का भजन नहीं करना ही अधर्म है। इसलिए जगत में जो धर्म जितने भी हैं, सर्वधर्मान प्रत्यजमान एकम, सर्व अधर्मान प्रत्यजमान एकम, सब धर्म अधर्म को सोच छोड़ करके भगवान का भजन करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या मिहतनु, सबको छोड़ करके किसका भजन करेंगे? अधिकांश लोगों को यह ठीक ही नहीं, ये किसका भजन किस रूप में हम करें। न तो शंकर को छोड़ सकते हैं, न हनुमान जी को छोड़, न नारायण जी को छोड़ सकते हैं, न दुर्गा मैया को छोड़ सकते हैं, न राधा कृष्ण को ही, नहीं बागल को, बाल गोपाल। कल एक संसद सदस्य उमा भारती जी हमारे पास में आए, बातों बात में कुछ बात हो गई, तो मैंने पूछा ये भगवान के प्रति आपकी क्या भावना है। देखा जो उन्होंने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को ले आई थी, इतनी बड़ी मूर्ति, बड़ी सुंदर, और ले करके हमको दिया, हमने उसको लिया, सिर पर भी रखा, इधर में रख करके फिर उनको दिया। क्या भावना आपकी है? तो उन्होंने कहा कि ये मेरे भैया हैं। दो चार मिनट का समय था, हमने कहा कि देखिए आप तो अमेरिका जा रही हैं और गीता पर सीरीज लेक्चर उनके थे हैं, अभी कोई हिंदुओं का विराट सम्मेलन वहाँ हो रहा है उसमें जा रही हैं, ये 2 महीने के वो लेक्चर देंगे, भारत पर से चुन करके जा रहे हैं। हमने कहा शास्त्र सम्मत हमारे जो विचार हैं इनको ग्रहण करके कहीं जा करके पश्चात देश में कुछ देंगे, बिना समझे बुझे चीज मत देंगे। उन्होंने तो ये दिया था ना, शून्य से सभी कुछ आया है, एवरीथिंग हैज कम आउट फ्रॉम जीरो, फ्रॉम नथिंग, एंड एवरीथिंग विल बी मेक्स्ड इन जीरो, सो एवरीथिंग इज जीरो, नथिंग साइफर, एवरीथिंग इज साइफर, सब कुछ साइफर है। हमने कहा जाए ये भारत की रीति नीति नहीं है, ये विधर्मी बौद्धों के ये विचार है। उनको भजन में सिद्धि नहीं मिली, इसलिए उन्होंने खींच करके कहा कि भगवान का ध्यान किया, भगवान आए नहीं, उनके अनर्थग्रस्त हृदय में, इसलिए कहा कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, उनका रूप नहीं है, गुण नहीं है, क्रिया नहीं है। किंतु गीता में कृष्ण एक पर्सनैलिटी है, कृष्ण एक व्यक्तित्व तो है, एक कृष्ण पर्सन है, और वही कृष्ण ने कहा है सर्वधर्मान प्रत्यजमान एकम शरणम, और इसको हमारे भारतीय मनीषियों ने कहा है, गीता का जहाँ समस्त उपदेश समाप्त हो जाता है वहाँ से भारत श्रीमद् भागवत, क्यों? इसमें प्रेम का संदेश है, केवल मर्यादा ही नहीं है, श्रीमद् भागवत में कुछ हद तक मर्यादा की शिक्षा दी गई, आत्म तत्व का बोध कराया गया, जो हम जड़ नहीं है, चेतन है, और वो भी आनंदमय है, किंतु इसके बाद में और कुछ नहीं दिया गया। उसमें भगवान के प्रति हमारा जो रिलेशन क्या है ये न दे करके साधारण में ये कहा गया कि भगवान हमारे पूज्य हैं, हम उनके पूजक हैं, वो आराध्य हैं, हम उनके आराधक, बस इतना ही तक, इसलिए सब धर्मों को छोड़ करके भगवान का, किंतु इसके बाद में नहीं दिया। जैसे एक स्कूल है, स्कूल में मास्टर होते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं, सब प्रोफेसर क्या एक ही जैसे होते हैं? ना, उनका विभाग कुछ अलग अलग होता है, ना? कोई साइंस पढ़ाते हैं, कोई फिलॉसफी पढ़ाते हैं, कोई साहित्य पढ़ाते हैं, साहित्य में भी कोई अंग्रेजी, कोई संस्कृत, कुछ हिंदी, कुछ कोई बंगला, अपने अपने विभाग में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी होते हैं, सब एक नहीं है। जितने बच्चे हैं सभी एक ही क्लास में नहीं होते, अलग अलग उनका रहता है। उसी प्रकार से भगवान के प्रति जो भक्ति है या भावना है एक प्रकार की नहीं होती है, 5 प्रकार की बतलाई है। इन 5 प्रकार में भागवत में भगवान के प्रति गोपियों के भाव को सर्वोत्तम बतलाया है। यही विशुद्ध प्रेम है। यदि आप इसको थोड़ा सा अनुभव करें और इसकी झलक या एक कण भी विश्व के लोगों को दे सकें तो ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी चीज देनी होगी जगत में। आप इसको उपलब्ध करें कर सकें या इसको अनुभव कर सकें और जगत को दे सकें भागवत का कोई संदेश, तो यह संदेश अमूल्य धरोहर है। किंतु समझना बहुत कठिन, बहुत कठिन है। इसी को ये करें, ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्यामिह तनु। ब्रज में राधा कृष्ण की प्रचुर परिचर्या करें, राधा क्रेव कृष्ण की उपासना सखा लोग करेंगे, है ना? दास लोग भी कृष्ण की केवल उपासना करेंगे। माता जसोदा भी, पिता नंद बाबा भी अकेले कृष्ण की उपासना करेंगे, बाल गोपाल की। किंतु जहां राधा कृष्ण दोनों होंगे उसमें कोई भी पुरुष वेश में वहां पर नहीं जा सकता, उसके लिए उनकी उपासना कैसे होगी? जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी करते थे, जैसे महाप्रभु जी करते हैं, इसलिए उसमें साधारण आदमी नहीं जा सकता, उसके लिए गोपियों का भाव चाहिए। बिना हुए कृष्ण की परिचर्या को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, इसलिए गोपियों का भाव, गोपियों की सेवा परिचर्या के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पर इंगित दे रहे हैं। अब विशेष करके इसलिए इंगित दे रहे हैं, सची सुनुम नंदीश्वर पति सुतत्ते गुरुवरम। सची सुनु चैतन्य महाप्रभु को तुम कृष्ण समझो। कौन? नंदी, नंदेश्वर पति सुतत्वे। नंदीश्वर के पति नंद बाबा, उनके पुत्र हैं नंदनंदन कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु वही नंदनंदन कृष्ण हैं, और ये राधिका जी के भाव और कांति को लेकर के जगत में राधा कृष्ण की परिचर्या की शिक्षा देने के लिए आए और स्वयं राधा भाव का स्वादन करने के लिए आए। इसलिए यदि गुरुवरम इधर भी लगा दो तो कोई हर्ज नहीं, गुरु के रूप में, जगत गुरु के रूप में इस चीज की शिक्षा देने के लिए आए। इसलिए चैतन्य शिक्षास्तक में उन्होंने इन चीजों की शिक्षा, इसलिए उनको गुरु वर्ग के भी रूप में लिया, जगत गुरु के रूप में भी ले सकते हैं। किंतु यहाँ पर गुरुवरम मैंने अपने गुरु जी को मुकुंद प्रेष्ठत्वम स्मरण, मुकुंद के परम प्रिय प्रेष्ठ के रूप में स्मरण। राधा कृष्ण की सेवा जो करने वाले हैं वो है गुरु, तो यहाँ पर गुरु जी को मुकुंद प्रेष्ठत्व, मैंने राधा और मुकुंद दोनों के प्रेष्ठत्व के रूप में इस रूप में लेना पड़ेगा। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी अपने इस शरीर से रूप गोस्वामी महाप्रभु जी के अनुगत, और इधर में अपनी मंजरी स्वरूप से राधा जी के अनुगत, उसी रूप में अपने गुरु जी को जैसे स्वरूप दामोदर को वो अपने गुरु वो स्वरूप दामोदर पारमार्थी उनको किस रूप में लेते हैं? ललिता सखी के रूप में लेते हैं, और ऊपर से लेते हैं महाप्रभु जी के परिकर के रूप में स्वरूप दामोदर के रूप में। इसी प्रकार से अपने गुरु को मुकुंद गुरुवरम मुकुंद प्रेष्ठत्वे स्मर परम अजस्रन अनुमन हे मन। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जी को कृष्ण के रूप में या राधा कृष्ण के रूप में, और अपने गुरु जी को मुकुंद का अत्यंत प्रियतम, जैसे गुरु जी के मंत्र में भी बतलाया कृष्ण आनंदाय, कृष्ण को आनंद देने के लिए और कृष्णा को आनंद देने दोनों के लिए, कृष्णा माने राधिका जी को, इसी रूप में गुरु जी का स्मरण करना चाहिए। धर्म धर्म जितने हैं सबको जलांजलि दे करके हमारी गुरु परंपरा से जिस पथ पर आचरण करते हुए चले आ रहे हैं उसी पथ से हम लोगों को भी भजन में अग्रसर होना चाहिए। अब दैन्य भाव के लिए कह रहे हैं, आशा बंध जात्रति भजनेर उक्ति। जिनके अंदर में प्रेम उत्पन्न हुआ है, जात रति है, भाव उत्पन्न हुआ है, उनको आशा है आज न कल कृष्ण जरूर मिलेंगे, कोई डाउट नहीं है उनको, कोई संदेह नहीं है कभी कृष्ण नहीं मिलेंगे, आशा नहीं, जरूर मिलेंगे ही। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने कहा न प्रेमा श्रवणाद भी भक्ति अपि वा जोगे अथवा वैष्णव ज्ञानाद वा शुभ कर्म वाक्यतहो सज्जात अपि अस्ति वा हिनार्थ साधके त्वयि तथाप्य छेद्य मूलात् सति हे गोपीजन वल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव कामा। बतला रहे हैं कितना बजा सब आप। ये इसका अनुवाद करके थे बतला रहे हैं, श्रवण आदि भक्ति प्रेम भक्ति योग ही ज्ञान योग कर्म ही सज्जाति भी ही कंगाल नाथ तुम्हें राधा प्राण धन तुमा पदे दृढ़ आशय आशाय व्याकुलित मन। यदि श्रवण भक्ति और प्रेम भक्ति इत्यादि से विहीन कोई योग हो वो आदरणीय नहीं है। जो वही आदरणीय है जिसमें श्रवण आदि भक्ति प्रेममयी भक्ति हो। यदि ज्ञान नहीं भी हो कर्म भी नहीं है, यदि उत्तम कुल में जन्म नहीं हुआ तभी कोई बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं, क्यों कृष्ण कंगालों के नाथ हैं, हे प्रभु आप कंगालों के नाथ हैं। यदि ऐसी प्रेममयी भक्ति रहती है, श्रवण आदि शुद्ध भक्ति रहती है तो भले ही ज्ञान कर्म और सब चीजें न रहें कोई भी हानि नहीं है। कृष्ण तो एकमात्र कंगालों के नाथ हैं। कंगाल माने कौन?
अकिंचन।
यहाँ पर दरिद्र से मत समझो, अकिंचन निष्किंचन ऐसे भक्तों से, जे कृष्ण ही जिनके एकमात्र धन है, कृष्ण भक्ति ही जिनका एकमात्र धन है और अपना कहा जाने वाला कोई धन नहीं है, ऐसे भक्तों के ये कृष्ण सर्वस्व हैं। राधा प्राण तुम अपदे दृढ़ आशाय व्याकुलित मन, ऐसा भक्त केवल मात्र राधा कृष्ण चरणों में एकांतिक भक्ति और एक प्रेम मात्र की ही प्रार्थना करता है और कुछ नहीं चाहता है। इसी तरह से इन्होंने दृढ़ता से भक्ति की तरफ में अग्रसर होने के लिए हम लोगों को इसमें बतलाया। आज यहीं तक रहे वंशा कल्पतरुभ्य
तदभक्ताजनमेतमेतपायनो विरह कातरयादिभावेति तन्मयतया सर्वोने तंसर्वभूतहृदय तवैवास्मि नजिमामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मय मामचरि यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरयादि पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं। तवैवास्मि तवैवास्मि नजिमामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं मे मां रहस्य अष्टम ज्ञान प्रेम भजन संभोग। कृष्ण भजन में निष्ठा होनी चाहिए, इसलिए मनुष्य शिक्षा का दूसरा श्लोक उन्होंने पहले बताया, न धर्मं न धर्मं। उनसे जो भजन करने वाला है, अधिकांश लोग जो भजन करते हैं वो शुद्ध रूप से नहीं कर पाते। जो लोग धर्म अधर्म कुछ भी नहीं करते, भगवान के नाम में इतना उनको विश्वास है और भगवत भक्ति में उनको इतना विश्वास है, विशेष करके राधा कृष्ण, कि और कोई चीज करने की कोई कामना ही नहीं रह जाए। एक आदमी हरिनाम कर रहा है, गुरु जी का पदाश्रय किया, मन पर दीक्षा सब हो गई, बहुत दिनों से प्रवचन में भी पाठ में भी आ रहा है या आ रहा है। मान ले कि किसी कारण से उसके घर में कोई विपत्ति आई, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा हमारे घर में ये जो विपत्ति आ रही है, इसके लिए हमको कोई अनुष्ठान कराना चाहिए, या तो ऊपर की हवा है, भूत पिशाच है, या तो कोई और गड़बड़ी है, इसलिए हमको अनुष्ठान करके उसका प्रायश्चित करना है। तो ऐसा कुछ मंत्र और लिया जाए या ऐसा कोई अनुष्ठान करें जिससे कि हमारी ये जो विपत्ति आ रही है ये, तो उसको हरिनाम में श्रद्धा हुई कि नहीं हुई? आदमी इस चीज को, भजन करने वाले जो हैं, साधारण लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, वो जितना भी समझाया जाए वो नहीं उनके समझ, उनको एक मंत्र दिया गया, गोपाल मंत्र, कृष्ण नाम, ये सब कहते और क्या है, इतना तो मैंने कर लिया, इसे तो देखते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, और कुछ दीजिए, और क्या बाकी रह गया जो मैं उसको कर लूँ तो जल्दी से हो जाए। किंतु ये लोग नहीं समझते, इसी एक मंत्र को श्रुतियों ने या उपनिषदों ने, बड़े बड़े महात्मा ने, ब्रह्मा जी ने, गोप कुमार ने करोड़ों करोड़ों वर्ष तक इसको किया, तब उनको साधन हुआ। और गुरु जी से नहीं पूछा जी, गुरु जी और इसके अतिरिक्त तो जो बाकी है वो भी दे दीजिए, और क्या बाकी रह गया? तो वो कहेंगे अच्छा जाओ, ये कृष्ण नाम में कुछ गड़बड़ी है, नृसिंह मंत्र कर लो तो इससे तुम्हारा पूजा हो जाएगा, ये विपत्ति। अच्छा उससे भी नहीं हो रहा है तो फिर तुम जाओ नारायण कवच, ऐसे ही ऐसे वो कह, विश्वास नहीं रहा। भक्त लोग अपनी विपत्तियों के लिए कुछ भी निराकरण नहीं करते, वो आए और जाए, न धर्मं न धर्मं। हमको धर्म और अधर्म से कोई जरूरत नहीं है, हम तो राधा कृष्ण का भजन करेंगे। राधा कृष्ण का भजन कैसे होता है? कृष्ण का नाम, कृष्ण का मंत्र, उनका स्मरण, उनका पूजन अर्चन वंदन, उनके धामों में जाना, यही सब। तो इसके अतिरिक्त हम धर्म न जानते हैं और अधर्म जानते हैं, जो कुछ भी होना हो जाए, तब तो ये ठीक दिखता है। इसलिए न धर्म न धर्म पहले बतला करके निष्ठा लगाया जाए, इसके अतिरिक्त और कुछ में मत जाओ, एकांतिक रूप से राधा कृष्ण का भजन करो। विपत्ति को दूर करने के लिए हरिनाम के अतिरिक्त दूसरा कुछ हमको नहीं करना है। चित्त को शुद्ध करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए हरिनाम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं करना है। ना हरि कथा या भगवत भजन कर, कुछ भी नहीं करना है, जो कुछ होता है होना होता है। जब ऐसा हो जाएगा तो उसके नाम में ऐसी शक्ति आएगी जो अपने आप सब विपत्ति तिपत्ति जो कुछ है। इसलिए इस भजन में ऐसी निष्ठा होनी चाहिए, तब तो वो सप्तम अष्टम सोपान में वो भक्ति जाती है, नहीं तो नहीं जाएगी। वो पहले ही सोपान में रह जाएगी कि वो उससे भी नीचे चली जाएगी। हम तो राधा कृष्ण का ब्रज में भजन करेंगे, हम और कुछ भी धर्म अधर्म नहीं जानते, न धर्म करेंगे न अधर्म करेंगे। चैतन्य महाप्रभु को नंदी सुत पति सुतत्ते, उनको ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में हम जाने, और मुकुंद पृष्ठ गुरु जी को मुकुंद पृष्ठ मुकुंद के अत्यंत प्रिय इस रूप में जान करके गुरु के चरणों में सेवा करते हुए उनकी परिचर्या करते हुए राधा कृष्ण का या चैतन्य महाप्रभु का मैं भजन करके और मैं कुछ भी नहीं करूँ, ऐसी निष्ठा के साथ में तब तो ये सप्तम सोपान में आएगा। अब इसके लिए कहते हैं कि भाई देखो, आशा बंद होनी चाहिए। आशा बंद दैन्य के साथ में आशा बंद, आशा बंद निर्बंध है ना। निर्बंध किसको कहते हैं? करिया निर्बंध वो श्लोक क्या है? नहीं, प्रभु कहे कहिलान यही महामंत्र इहा जप सब गिया करियान। निर्बंध माने क्या? संख्या रख करके, तो इसका मतलब क्या है? इसी को कहते हैं निर्बंध है ना, निर्बंध को जोड़ दो आशा बंध। ये आशा बंध माने क्या है? जरूर मिलेंगे ही, जरूर मिलेंगे, हम जो भजन कर रहे हैं उससे मिल जाएंगे। वो बड़े दयालु हैं, इसलिए देखेंगे जो ये ऐसा कर रहा है तो अपने आप वो मिल जाएंगे, ये आशा। हम भजन करके उनको पालेंगे इस आशा से जरूर हम पा करके ही रहेंगे, ऐसा नहीं। वो बड़े दयालु में सुना है, सर्वत्र उनकी करुणा की वर्षा हो रही है, उसकी यदि एक भी छींट किसी प्रकार से हमारे ऊपर में लग गई जरूर हमारे ऊपर में उनकी कृपा हो गई। इसकी आशा उस करुणा को पाने के लिए उनकी करुणा गिर रही है आ रही है, हम जरूर उस करुणा को प्राप्त करें, ये नहीं तो साधन भजन से उनको हम पा जाएंगे उनकी कृपा हो जाए, ये आशा बंधन। उसी का उदाहरण देकर के यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर जी ये कह रहे हैं, न प्रेमा स्वर्ण आदि भक्ति रवि वा योगो अथवा वैष्णव ज्ञानात ज्ञानात वा शुभ कर्म वा कियदहो सज्जाति अपि अस्ति वा हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथाप्य छिद्य मूला सती हे गोपी जनवल्लभ व्यथयते हा हा मदिष मदा शैव न। कहते हैं न प्रेमा, मुझे प्रेम नहीं है, हे गोपी जन वल्लभ मुझे आपके चरणों में प्रेम नहीं है। और प्रेम की तो, प्रेम तो सिद्ध है, उस सिद्ध की तो बात कहें, प्रेम की तो वो तो प्रेम तो बहुत दूर की बात रहे। श्रवण आदि भक्ति रवि, श्रवण आदि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यक्षात्मेदनम, ये जो नौ प्रकार की भक्ति है अथवा 64 प्रकार की भक्ति है, इसमें से कोई भी साधन भक्ति हमारे अंदर में नहीं है। हम लोगों को अभी प्रतीत नहीं होगा, जब मध्यम अधिकारी में हम पहुंचेंगे, जब विचार करेंगे, एक आदमी कुआं खोद रहा है, आजकल तो वो लगा देते हैं ना
हैंडपंप,
पहले कुआं खोदता था, कुआं खोदते चले चले जा रहे हैं। कुआं खोदना ही संतोष की बात तो नहीं है ना, संतोष की बात क्या है?
अच्छी पानी,
पानी के लिए तो कुआं खोद रहे हैं, पानी मिला नहीं खोदते चले जा रहे हैं। तो क्या हुआ? व्यर्थ ही हुआ। यदि खोदते 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 पानी यदि मिल जाए तो हम जिस काम के लिए कुआं खोद रहे थे वो मिल जाएगा। तो पानी मिलना चाहिए, पानी ना मिले साधन कर रहे हैं, साधन सहस्त्र 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 साधन कर रहे हैं किंतु तनिक भी कोई लक्षण नहीं दिखा जा रहा है जो हम साधन करें का जो फल है उसका थोड़ा सा भी पूछा न तो अनर्थ निवृत्ति हो रही है, न कि चित्त प्रसन्न हो रहा है, न कुछ हो रहा है। जयात्मा संप्रसिद्धति, जिसके करने से आत्मा प्रसन्न होती है। तात्पर्य क्या? आत्मा कब प्रसन्न होगी? भगवान के प्रसन्न होने से ही तो आत्मा प्रसन्न होगी ना, अपने आप हो जाएगी। इसलिए भगवान के प्रसन्न होने से भक्ति करते हैं भगवान की, इसलिए भगवान प्रसन्न होंगे, और भगवान के प्रसन्न होने से साधक में भी अपने आप प्रसन्नता आएगी। तो जिसके साधन से प्रसन्नता नहीं है, चित्त व्याकुल हो रहा है, अशांति हो रही है, तो फिर संसारिक वस्तुओं की लालसा हो रही है, तो कैसे होगी साधन? ये तो साधन नहीं। इसलिए जब हम विचार करके देखते हैं, शास्त्र में कहा गया है प्रभु नमाभाज सदाई नमापराध, ये सब जाने में भाई कृष्ण भक्ति है। कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब विचार करो ये जो नाम हमारा हुआ, ये कौन कोटि नाम हुआ? ना नमाभास हुआ, ना नमापराध हुआ, क्या हुआ? जब विचार करके देखेंगे ये नाम का जो लक्षण है, एक कृष्ण नाम करने से ही सब पाप दूर हो जाते हैं और प्रेमा भक्ति उसको हो जाती है, ये नहीं हो रहा इसलिए शुद्ध नाम को है। नमाभास में मुक्ति मिल जाती है। यदि हम आज तक कितने दिन 10 वर्ष तक 5 वर्ष तक नमाभास कर रहे हैं तो ये मुक्ति होती रहती, तो मुक्ति तो कुछ हो नहीं रही है, दुख भी नहीं दूर हो रहे हैं। वो मुक्ति की तो बात करूँ तो वो जो मुक्ति होती है सामिप्य इत्यादि तो बहुत मुक्ति है, ये भी नहीं। तब हम देखेंगे क्या, ये भी नाम है। नाम लेने से चित्त में आनंद होगा, रुचि उसमें होगी, चित्त गदगद हो जाएगा, तो ये तो होता नहीं। तब ये क्या है? तो नमाभास भी नहीं है, तब फिर क्या है? तब तो नमापराध ही रह गया, तो नमापराध होगा। इसको दूर करने के लिए चेष्टा कर, जब हृदय गदगद होने लगे, द्रवित होने लगे, पुलक होने लगे, खूब आनंद होने लग गए, तब समझो जैसे ये नाम अब नामाभास कुछ कुछ अब चल रहा है। तो इसको विचार करना चाहिए, ये हमारा नाम कौन सा कोटि में है? हम अभी जोर से मन लगा करके जोर से कर रहे हैं ना, अपने आप हो रहा है। नित खुले तो देखो जैसे उस समय क्या होता, उस समय नाम अपने आप हरे कृष्ण चल रहा है कि नहीं, देखो यदि हो रहा है तो समझो। काम करते हैं तो उसका स्वप्न देखते हैं, अच्छा तो ये जो नाम कर रहा है या उनका जो श्रवण कीर्तन इत्यादि कर रहा है तो तुम उनको स्वप्न में कुछ देखता है कि नहीं? मुझे संत में उसमें तो अंत संत बातें आती, तब ये सब के लक्षण इसमें कुछ है। इसलिए इन लक्षणों को विचार करके देखना चाहिए। न प्रेमा, इसलिए प्रेम नहीं है। अब रह गया साधन भक्ति। साधन भक्ति भी, साधन भक्ति किस लिए? साधन भक्ति भाव को उत्पन्न करने वाली होती है। तो हमारा साधन जब भी कर रहे हैं ये भाव को उत्पन्न करेगा कि नहीं, या कर रहा है कि नहीं? पहले वो अनर्थ को दूर करके निष्ठा लाए, निष्ठा से रुचि आए, अपने आप करने की इच्छा हो, तब तो समझो जैसे ये हो रहा है। इसलिए स्वर्ण आदि भक्ति भी हमारे अंदर में नहीं है जैसा होना चाहिए। अभी वा जोगो अथवा जोगो,
योग माने यहाँ पर अष्टांग योग इत्यादि में साधारण अर्थ, और विशेष अर्थ होगा वैष्णव योगो, योगो वैष्णव, वैष्णव का योग नहीं, अथवा वैष्णव का योग माने वैष्णव लोग जो भगवान का निरंतर स्मरण करते हैं अष्टकाली लीला, वो लीला नहीं तो अंततः तो भगवान का नाम एकदम प्रति के साथ में योग युक्त होकर के करते हैं, अनन्य मन से करते हैं, ये वैष्णव का योग है, अर्थात तो भगवान का स्मरण वो करते हैं। तो ये है कि नहीं, ये भी नहीं। ज्ञान अथवा ज्ञान कहते हैं निर्विशेष ज्ञान का, वो भी चित्त शुद्ध हो जाता, वो भी नहीं। और वैष्णवी पक्ष में होगा ज्ञान आत्मा भगवत तत्व ज्ञान भी नहीं है, किसको भगवान का तत्व ज्ञान, इसमें तम पदार्थ और अहम पदार्थ, अहम माने मैं, तम तत्पदार्थ, तम पदार्थ और तीन पदार्थ, अहम माने मैं जीव शायद, और तम माने तुम जी, एक माया पदार्थ का है, तो माने भगवत पदार्थ, तत्पदार्थ, पंग पदार्थ, ये सब का ज्ञान भी हमारे अंदर में नहीं है। मैं कौन हूं, शुभ कर्म वर्णाश्रम धर्म का शुभ कर्म भी मेरे अंदर में नहीं है। और दूसरा होगा शुभ कर्म, यहाँ शुभ कर्म माने भगवत परिचर्या, भगवत भक्त परिचर्या रूपी ये शुभ कर्म, ये भी नहीं है। न तो वर्णाश्रम धर्म का कर्म है और न शुभ कर्म, शुभ कर्म माने वैष्णव की परिचर्या रूपी जो ये शुभ कर्म जिसे भक्ति होती है, ये भी नहीं है। क्या कहो, इनमें से कुछ भी मेरे अंतर नहीं है। और क्या सज्जाति अपि अस्ति वा, ऊंचे कुल में मेरा जन्म भी नहीं है। एक सज्जाति होता है, एक दुर्जाति होता है। दुर्जाति माने जो कि कुत्ते का मांस इत्यादि भी खा लेते हैं, अंत जिनको स्पर्श करने से जिनके आचार व्यवहार अत्यंत कुत्सित होते हैं उनको दुर्जाति कहते हैं। जिनके छूने से स्नान करना पड़ता है, तो मेरी जाति भी कुछ नहीं आता, मैं उसी दुर्जाति कुल में पैदा हुआ, क्योंकि भक्ति नहीं है तब इसे बढ़कर के क्या होगा। इसलिए हा हुतास करते हुए ये कह रहे हैं, मैं ऐसे दुर्जाति कुल में उत्पन्न हुआ। हिनाक साधके त्वई अपि अच्छेद्य मूलात्, और सचमुच में मैं बहुत हीन हूं, दीनहीन हूं, इनमें से कुछ भी मेरे पास नहीं है। तथापि अच्छेद्य मूलात,
तथापि हमारी जो आशा है शुद्ध अच्छेद्य,
तथापि हमारी एक आशा, वो आशा क्या है, वैसा है, ऐसी आशा है अच्छेद्य मूला, जिसका अब मैं दूर नहीं, उस आशा को अब अपने वैसे नहीं निकाल सकता।
बहुत लंबी चौड़ी आशा,
वो आशा यह है कि मैं इतना दीनहीन होने पर भी, सब कुछ होने पर भी, ऐसा असाधक हूं, साधक भी नहीं करने वाला, इतना होने पर भी त्वई आपकी अच्छेद्य मूला जो कृपा है, जो आप जरूर इस पर कृपा करेंगे, बस यही एक आशा है याद मिले। और इसी आशा से हे गोपीनाथ बल्लभ, गोपीजन बल्लभ, व्यथते मदाशायुव माम, मेरा हृदय व्यथित हो रहा है, कम मिलेंगे, कम मिलेंगे, इसको कहते हैं आशाबंध। आशाबंध माने मैं अपने साधन से भगवान को प्राप्त कर लूंगा, उनकी कृपा मिल जाएगी, ये नहीं, बल्कि ये आशा कि वे बड़े अहेतुक करुणाशाली हैं, उनकी चारों तरफ में करुणा की वर्षा हो रही है। करुणा की वर्षा नहीं होती ना तो हम जैसे लोग कहां यहां भगवत कथा में, मथुरा धाम में, वृंदावन धाम में हम लोग प्रवेश कर सकते, ये संभव पर नहीं, इसलिए ये भगवान की भक्ति करुणा है। जब इतना करुणा किया है तो अब थोड़ी सी करुणा वो भी मिले, इसलिए यहाँ पर कर रहे हैं। एक बात और इसमें कर रहे हैं, भगवान की भक्ति जो होती है वो अहेतु की होती है, कर्म ज्ञान योग तपस्या के अधीन, सब कर्मों के अधीन नहीं होती है। एक महादुराचारी व्यक्ति को भी भक्ति हो सकती है और वहीं से भक्ति करते करते जगत का वंदनीय हो सकता है। वेश्या जो चैतन्य के समय हरिदास ठाकुर के समय अत्यंत घृणित वेश्या, किंतु जब हरिदास ठाकुर के तीन रात हरिनाम श्रवण करने से परम पवित्र महांती हो गई, वैष्णवी हो गई और उसने कपड़े टपड़े सब रख दिए घर में, ब्राह्मणों को अपना अर्थ सब कुछ दान कर दिया, वो एक वेश्या व्यभिचारी वेश्या, अपना सामान दे दिया दान्य, तो दान कौन दिया? अच्छा उनकी गति क्या होगी जो ऐसे दान लेते हैं, किंतु वो ले लेंगे, उनको डर भय नहीं है, वो दान ले और वह न जाने क्या उनकी गति होगी। अब वो उसको देख करके एक वस्त्र धारण करके आई, गंगा स्नान करके और हरिदास ठाकुर के सामने खड़ी हो गई। हरिदास ठाकुर ने उससे कहा कि मैं तो तीन दिन पहले ही चला जाता, बस नाम की महिमा हमको देखनी थी और जगत को दिखानी थी, इसलिए मैं यहाँ पर ठहर गया था। अब तुम्हारा चित्त शुद्ध हो गया है, आप अब देवी हो गई हैं, वैष्णवी हो गई हैं, आप यहीं रहे, मैं स्थान आपको देता हूँ। अब ये तुलसी